उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों को आस्था ने अपनी कमर पर से हटाया था। तब जल्दी ही अरमान बिना किसी को कुछ कहे सीधा जिम रूम में चला गया। बार बार आस्था की प्रेग्नेंसी के बाद उसका बिहेवियर उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वहीं दूसरी ओर अमरीश, वीर और रायचंद जल्दी ही देश छोड़ने की तैयारी में थे, क्योंकि अमरीश ने ये तय किया था कि वो अपने बेटे को पूरी दुनिया से बचाकर ले जाएगा। भले ही अरमान ने अबीर सिंह राठौर की कैद से उन्हें जाने दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमरीश को अभी भी बहुत ज्यादा डर था। वो समझ चुका था कि इतनी आसानी से अरमान उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, इसीलिए अमरीश ने वीर को पहले देश से बाहर भेजने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर एक से डेढ़ घंटा जिम में काफी मशक्कत के बाद अरमान सीधा अपने कमरे में गया। उसने शावर लिया और अच्छे से ड्रेसअप करके आस्था के पास जाना चाहता था। आस्था के पास जाकर वो उसके साथ समय बिताना चाहता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया ने एक बार फिर अपना सारा काम घर से करने का फैसला लिया और देव को सारे निर्देश दे दिए कि वो सब काम घर से ही संभालेगा, क्योंकि जब तक उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता, अरमान सिंघानिया अपनी बीवी को एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं छोड़ेगा। अरमान बिल्कुल इस तरह से तैयार हुआ था मानो कि वो ऑफिस जा रहा हो, लेकिन असल में वो आस्था के साथ समय बिताने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आस्था नानी माँ के कमरे में थी और खिड़की के पास खड़ी होकर वो मायूसी से बाहर की तरफ सिंघानिया मेंशन के खूबसूरत गार्डन को देख रही थी। जैसे ही आस्था वहां गई, नानी माँ तुरंत उसके पीछे आई और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, मेरी गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे तुम्हारा बिहेवियर कितना अजीब था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौरी, तुम इस तरह से अपने बसा बसाए घर नहीं उजाड़ सकती हो और तुम अब शादीशुदा हो। शादी के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, तो इस तरह से माँ बनना स्वाभाविक है बेटा। ये तो बहुत बड़ी नेमत है भगवान की जो तुम पर बरसी है, और तुम इस तरह से अब पीछे नहीं हट सकती हो। इस नेमत को तुम्हें खुशी से अपनाना चाहिए। और तब आस्था तुरंत मुड़ी। आज उसकी आंखें बेहद निराश थीं, जिसमें सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। तब आस्था ने पीछे मुड़कर नानी माँ की ओर मायूसी से देखकर कहा, नानी माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे इस तरह के बिहेवियर का क्या कारण है, और ये बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना मैं अपने गुनहगारों से बदला ले पाऊंगी, और फिर मेरी जिंदगी सिर्फ उस बच्चे के आसपास ही घूमने लगेगी, क्योंकि अगर एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं उसे अपने जैसा बचपन नहीं जीने दूंगी, या फिर मिस्टर सिंघानिया के जैसा बचपन नहीं जीने दूंगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं अगर मिस्टर सिंघानिया का बचपन खराब था, और तो और मेरा बचपन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ की ओर देखने लगी और फिर एकदम बिना इमोशंस के रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नानी माँ, प्लीज अब मुझे साफ साफ बताइए, मेरे माता पिता की जान मेरी वजह से कैसे गई थी। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर से ये सवाल किया तो नानी माँ थोड़ा सा इधर उधर देखने लगी। कुछ तो ऐसा था जो नानी माँ छुपा रही थी, लेकिन आज तो आस्था ने तुरंत नानी माँ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और जिद करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती नानी माँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, वो सच जिस सच से आपने मुझसे आज तक छुपा कर रखा हुआ है। आप जानती हैं मैंने खुद अपने माता पिता के कातिल को देखा था, फिर मेरी वजह से मेरी माँ बाप की जान कैसे जा सकती है। नानी माँ, ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, प्लीज़ मैं सारा सच जानना चाहती हूँ, प्लीज़ नानी माँ, ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ से रिक्वेस्ट करने लगी। वहीं नानी माँ आस्था के सर से अपना हाथ झटकते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे सच छुपाकर मैं खुश हूँ? हाँ, लेकिन मैं एक वादे से बंधी हूँ। मेरी बच्ची, भला मैं अपनी मरती हुई बेटी के वादे को कैसे तोड़ सकती हूँ? मेरा बच्चा, बताओ मुझे मैं क्या करूँ? ऐसा बोलकर नानी माँ रोने लगी। नानी माँ की आंखों में बहुत ही कम इमोशंस बाहर दिखाई देते थे, लेकिन वो आस्था से बेहद प्यार करती थी। लेकिन अब इस तरह से आस्था के रिक्वेस्ट करने पर, अपनी कसम देने पर नानी माँ मजबूर सी हो गई और उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और इमोशनल होते हुए बोली, और मेरा बच्चा, जब मेरी बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही तो उसके वादे को मैं जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मृत बेटी के लिए अपनी जिंदा बेटी का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। तुम यहाँ बैठो और ये मेरी बेटी की, यानी कि तेरी माँ की डायरी, जो वो अपने हाथों से लिखा करती थी, और इसमें वो सारा सच है जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है। ऐसा बोलकर नानी माँ ने अपनी एक छोटे से थैले में से एक डायरी निकालकर आस्था के हाथों में थमा दी और तभी इससे पहले कि आस्था नानी माँ को कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। जल्दी ही आस्था ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डायरी को नानी माँ के उस थैले में वापस रख दिया और अपने आंसू पोंछकर दरवाजे की ओर देखने लगी और घबरा कर बोली, कौन है, आ जाइए। जल्दी ही अरमान सिंघानिया का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया। अरमान सिंघानिया आस्था को ही देख रहा था, क्योंकि अरमान को इस तरह से सुबह सुबह तैयार हुआ देखकर आस्था हैरान से देखते हुए पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप ऑफिस क्यों नहीं गए? आस्था का सवाल सुनकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। जल्दी अरमान आस्था के पास आकर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे आते ही आस्था को गोद में उठा लेता है। अब नानी माँ ने शर्मा कर अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में ले लिया और तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तब अरमान आस्था को लेकर वहां से बाहर निकलने लगा और आस्था अरमान के गले में अपने हाथ डालकर बोली, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, आपको ऑफिस के लिए लेट होया होगा, प्लीज आप जाइए। तब अरमान बिना कुछ कहे आस्था को सीधा नीचे हॉल में ले आया और खुद बखुद आस्था के लिए चेयर खींचकर उसने आस्था को उस पर बिठाया और फटाफट से एक ठंडी आवाज में बोला, राजेश, मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। जल्दी ही राजेश एकदम हेल्दी फूड के साथ वहां मौजूद था, साथ ही साथ जूस वगैरह भी वहां पर सब मौजूद था। अब आस्था हैरानी से सारे खाने को देख रही थी। सारा खाना एक तरह से उबला हुआ सा खाना था, जो कि अरमान ने डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह मशविरा लेने के बाद ही आस्था के लिए बनवाया था। अब उस खाने को देखकर आस्था अरमान की ओर सवारियां नजरों से देखने लगी और आंखें मटकाकर बोली, ये सब क्या है, हम मरीज थोड़ी ना है कि हम ये उबला हुआ खाना खाएंगे। तभी अरमान ने खुद बैठकर आस्था को पहले कुछ फल खिलाना शुरू कर दिया और सर्द आवाज में बोला, आप क्या खाना है क्या नहीं है, आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है और आज से आपकी डाइट का पूरा ख्याल मैं खुद रखूंगा और इसीलिए मैं आप पूरे एक साल तक ऑफिस में जाकर काम नहीं करूंगा। अरमान की बातें सुनकर आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लेगा। वही सबके सब हैरानी से अरमान की ओर देख रहे थे, स्पेशली नानी माँ, वो तो अपनी आंखें मसल मसल कर बार बार दादाजी की ओर देख रही थी। वहीं राधिका, रश्मि, साथ साथ रौनक ये देखकर मुस्कुराने लगी थी, लेकिन आकाश और सुमित के चेहरों पर कुछ अजीब से भाव थे, क्योंकि अरमान आस्था को प्यार तो कर रहा था, उसकी केयर भी कर रहा था, लेकिन सबको बेहद ओवररिएक्ट जैसा फील हो रहा था।
लेकिन आस्था तुरंत अपनी सीट पर से खड़ी हुई और अरमान की ओर देखकर भड़कते हुए बोली, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला हम ये खाना कैसे खा सकते हैं और आपको छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, हम प्रेग्नेंट हैं, हम बीमार नहीं हैं कि आप कामकाज छोड़कर हमारी केयर करेंगे। तभी अरमान ने आस्था के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, आपको मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बोल दिया ना कि आज के बाद आप वही खाएंगे जो मैं आपको खिलाऊंगा। आस्था को तो लगा था कि रश्मि दी ने उसके लिए काफी टेस्टी खाना बनाया होगा, लेकिन अब वो खाना देखकर समझ चुकी थी कि जरूर अरमान ने रश्मि दी के खाने की जगह ये दूसरा उबला हुआ खाना उसके लिए तैयार करवाया होगा। अब तो आस्था को पहले दिन ही अजीब सा फील होने लगा था, एक अजीब सी घुटन उसके सर पर सवार सी होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो है जो कुछ ठीक नहीं है, और अजीब सा आस्था को यू नो बीच बीच में मिचली जैसा कुछ होने लगा था। वेल, तभी आस्था ने तुरंत बड़े ही प्यार से अरमान के हाथों को पकड़ा और इनकार करते हुए बोली, देखिए प्लीज, आप इस तरह से घर पर मत रहिए, आप जाकर अपना काम कंटिन्यू कीजिए ना प्लीज, और अगर हमें कुछ भी जरूरत होगी तो हम आपसे ही तो बताएंगे ना, और तुरंत हम आपको फोन कर देंगे। और हाँ, हम जानते हैं कि उस दिन हमें इस तरह से आपके बिना बताए हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी गलती थी और उसके लिए हम आपसे माफी मांग चुके हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि बिना आपको बताए हम कहीं नहीं जाएंगे। सो प्लीज 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 आप इस तरह से घर पर रुककर मुझे इस बात का एहसास मत करवाइए मानो कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है या मुझे कुछ हो गया हो। ऐसा बोलकर आस्था अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लाते हुए अरमान को देखने लगी। वहीं आस्था के मन की बात जानकर तुरंत दादाजी अरमान के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे मेरा बच्चा, आस्था बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी अभी बहुत समय है और हम हैं ना यहाँ आस्था बेटी का ध्यान रखने के लिए, और रश्मि बेटी तो है ही, तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो, और वैसे भी अगर कुछ भी परेशानी हुई तो तुम्हें फ़ोन कर देंगे, वैसे भी तुमने जो ये चारों तरफ CCTV लगवा रखे हैं और यहाँ भी तो लगे हुए हैं, तो तुम आसानी से आस्था बेटी को अपने ऑफिस में जाकर बैठकर भी देख सकते हो। ऐसा बोलकर दादाजी और नानी माँ भी अरमान को ऑफिस जाने के लिए कहने लगे। तभी आकाश, सुमित भी आगे आए और क्योंकि वो भी चाहते थे कि अरमान ज्यादा से ज्यादा समय आस्था के साथ बिताए, हालांकि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अरमान का बिहेवियर जो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, अगर बच्चे को लेकर वो ज्यादा पजेसिव हो गया तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, ना तो आस्था के लिए ना ही उसके होने वाले बच्चे के लिए। तो इसीलिए आकाश और सुमित ने भी अरमान को समझाने की कोशिश की और कहा, सब लोग ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस तरह से अपने ऑफिस को घर पर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम इतना कर सकते हो, तुम ऑफिस से वक्त से पहले जल्दी आ सकते हो। आस्था के लिए अब कहीं ना कहीं अरमान सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आस्था पर जाकर ठहर रही थी, क्योंकि वो डेस्परेटली आस्था के साथ ये पूरा साल बिताना चाहता था, एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं करना चाहता था।
हालांकि आस्था को बिना पता लगने दिए ऑलरेडी वो आस्था की गुनहगार को सजा दे चुका था। मलाइका जिसने आस्था को मॉल में बंद किया था उसे ऑलरेडी उसके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन अरमान को ऐसा लग रहा था कि अगर वो आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ आएगा तो उसके बच्चे या आस्था पर किसी न किसी तरह की कोई मुश्किल आ सकती है। और वैसे भी आस्था के बारे में वो जो जानकारी चाहिए थी उसके लॉकेट का राज भी वो पता लगा चुका था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे आस्था को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। वेल, तभी सबकी नजरें दरवाजे पर गईं। देव कम से कम अपने सर के ऊपर तक फाइलें लेकर वहां आ रहा था। देव को इस तरह से देखकर सबकी हंसी छूट रही थी। तभी देव थके हुए स्वर में बोला, अरे आहान ध्रुव, कहाँ हो तुम लोग यार, थोड़ी मदद करो ना, क्यों खड़े खड़े मुझे देख रहे हो, मदद करो मेरी। ऐसा बोलकर देव ध्रुव आहान को आवाज देने लगा, क्योंकि उस वक्त इतनी सारी फाइलों के साथ देव काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और किसी भी पल सारी की सारी फाइलें गिर सकती थी। उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा फनी लग रही थी। कोई भी इस वक्त उसे इस तरह से देख लेता तो पक्का हंसते हंसते बेहाल हो जाता। तभी आहान और ध्रुव आगे आए और आगे जाकर उन्होंने देव के मुंह के ऊपर से आधी फाइलें ले ली थी। फिर धीरे धीरे फाइलें देव के पेट तक रह गई थी। आधी आधी फाइलें आहान ने ले ली थी। तब आहान फाइलों की ओर देखकर बोला, अरमान भाई, आपने क्या पूरे साल का काम आज एक दिन में मंगवा लिया है क्या? घर पर तब अरमान केवल आहान को घूर कर रह गया था। तभी अरमान ने एक नजर सबकी ओर देखी और फिर देव की ओर बिना एक्सप्रेशन के देखकर बोला, वापस से सारी फाइलें ऑफिस में लगवा दो, हम ऑफिस चल रहे हैं। ऐसा बोलकर अब जल्दी ही अरमान अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं नानीमा अरमान का आस्था के लिए इतना ज्यादा पोजेसिव नेचर देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि वो आस्था की जिंदगी में शुरू से एक ऐसी पार्टनर चाहती थी जो आस्था को बेहद प्यार करे, उसकी बहुत ज्यादा केयर करे। और यहाँ तो अरमान आस्था के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी पूरी तरह से केयर कर रहा था।